नंदिनी से बात करने के बाद आशुतोष ओबेरॉय मेंशन में वापस आ चुका था। उसने देखा उसकी पूरी फैमिली वहीं पर थी। आर्या हॉस्पिटल में था। ये अच्छा मौका था जब वो अपनी फैमिली से आर्या की शादी के बारे में बात कर सकता था। आशुतोष ने रमनदीप को वहां देखा तो मन में कहा, तो चाची जी भी यहीं हैं, ये अच्छा चांस है, इनके सामने आर्या की शादी की बात करूंगा तो प्रूफ हो जाएगा मुझे उसकी परवाह है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहां से जा रही थी। उसे मुस्कुराता देखकर रमनदीप ने रुककर पूछा, क्या बात है जो इतनी खुशी हो रही है? बस बात ही कुछ ऐसी है, आप जा रही है? आशुतोष ने कहा, हाँ, आर्या से मिलने आई थी, बच्चे जिद करने लगे तो उनके साथ यहाँ आ गई, रमनदीप ने बताया। चलिए अंदर चलते हैं, मुझे सबसे कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना है। आप भी परिवार का हिस्सा है, आपका वहां होना जरूरी है। कहीं तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट कैरिन से शादी करना तो नहीं? रमनदीप ने हैरानी से पूछा। नहीं, ये आर्या से जुड़ा है और मैंने डिसीजन ले लिया है। हुनते रुकना बनता है। रमनदीप ने जैसे ही आर्या का नाम सुना वो तुरंत रुकने के लिए तैयार हो गई। वो अंदर जा रही थी। उन्होंने स्टाफ के जरिए बाकी ओबेरॉय फैमिली को भी घर के लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया था। हॉस्पिटल में आर्या ने जो शर्त रखी थी उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं था, सिवाय उनके जो उस वक्त वहां मौजूद थे। ओके, तो यहाँ बहुत से लोगों को पता नहीं कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ था। उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं पहले सब बताना चाहूंगा, आशुतोष ने बातचीत की शुरुआत में कहा। मैं चाहता हूँ आर्या वापस इस घर में आ जाए। दैट्स गुड स्वीट हार्ट, कैरिन ने मुस्कुराकर कहा। इसे तो देखो कितनी खुश हो रही है, इसे पता नहीं है ब्रो ने घर वापस आने की क्या शर्त रखी है। शौर्या ने तिरछी मुस्कुराहट दी। अभी इसकी स्माइल गायब होने वाली है, क्या लगता है डैड इसको बाहर निकाल देंगे क्या? मायरा ने पूछा। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने इसे भगाने के लिए इतनी प्लानिंग की है, फिर उसका क्या होगा? शौर्या ने मुंह बनाकर कहा। उनकी बातें विक्रम जी के कानों में पड़ी। उन्होंने उन्हें आंख दिखाकर कहा, तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? पहले मुझे लगता था टीवी सीरियल में जो स्वार्थी परिवार दिखाते हैं वो बस एक ड्रामा होता है, पर यहाँ आकर सब सच लगता है, रमनदीप ने ताना दिया। हाँ, तो आर्या ने वापस घर आने के लिए कंडीशन रखी है, ही वॉन्ट्स मैं कैरिन को घर से निकाल दूँ, फिर वो वापस आ जाएगा। आशुतोष ने वहाँ हॉस्पिटल में हुई बात बाकी लोगों को बताई। उनकी बात सुनकर कैरिन का चेहरा उतर गया, तो वहीं क्रिस्टी के चेहरे पर चमक थी। क्रिस्टी ने तुरंत कहा, तो क्या सोचा है तुमने? आर्या इस घर का बेटा है, उसका हक बनता है यहाँ रहना। इसमें सोचना क्या है, ही विल सिलेक्ट मी, कैरिन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और आशुतोष के पास जाकर खड़ी हो गई। ऑफ कोर्स बेबी, आई विल सिलेक्ट यू, आशुतोष ने कैरिन का हाथ पकड़कर किस किया। अच्छा, तो ये बात बताने के लिए तुमने मुझे रोका? डिस्कस्टिंग, रमनदीप गुस्से में खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। आशुतोष जल्दी से उनके पास गया और रोकते हुए बोला, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब सुनने को रही क्या गया है, उन्होंने जवाब दिया। बहुत कुछ, आशुतोष ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस बैठा दिया। वो आगे बोला, हाँ तो अब मेरी बात बिना मुझे जज किए सुनिएगा, मैं चाहता हूँ आर्या अब अपनी लाइफ में एक स्टेप और आगे बढ़े और शादी करे। चलो तुम्हें ये याद तो आया, इतने में ही वाहेगुरु जी का शुक्र है, रमनदीप बोली। हाँ तो मैं आर्या की शर्त मानने को तैयार हूँ, पर बदले में उसे मेरी बात माननी होगी, उसे मेरी सिलेक्ट की हुई लड़की से शादी करनी होगी, आशुतोष ने बताया। अच्छा, तो तुम्हारी पसंद की लड़की? बिल्कुल नहीं, तुम इसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड जैसी लड़की देखोगे, आर्या का अपना स्टैंडर्ड और चॉइस है, मेरे होते हुए तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। आशुतोष की बात सुनकर विक्रम जी को गुस्सा आ गया। मैंने उसके लिए अपने दोस्त की बेटी को सिलेक्ट किया है, वो उसकी सेकेंड वाइफ की डॉटर है और इंडिया से है, आशुतोष ने कहा। मैंने शायद तुम्हें ना कहा है, आर्या शादी नहीं करना चाहता है, विक्रम जी ने फिर कहा। क्यों, उसकी लाइफ में कोई और लड़की है? आशुतोष ने एक भौं उठाकर पूछा। नहीं, पर वो तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी क्यों करेगा? विक्रम जी ने पूछा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा जी, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप ही मेरे खिलाफ हो गए। वो मेरा बेटा है, यकीन मानिए मैंने उसके हिसाब से ही लड़की पसंद की है, आप सब उससे मिलेंगे तो आपको भी पसंद आएगी, आशुतोष ने कहा। हाँ, मिलने के बाद हम डिसीजन ले लेंगे, पर पहले ही मना मत करो, रमनदीप ने विक्रम जी को समझाया। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है उस अकड़ू से कौन शादी करना चाहेगा? शौर्या ने दबी आवाज में पूछा। वही जो उसकी तरह सड़ू होगी, पर गौर करने वाली बात है उससे शादी करेगा कौन? मायरा ने कहा। दोनों आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, तभी आशुतोष का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने उन दोनों को डांटते हुए कहा, कभी इतनी शिद्दत से अपनी स्टडी पर भी ध्यान दे लिया करो, मैंने तुम दोनों की रैंक देखी है, अगर यही हाल रहा तो मुझे अपना बिजनेस ट्रस्ट में डोनेट करना होगा, और क्या पता अचानक आपके प्लान्स बदल जाएं और आप अपना बिजनेस आर्या ब्रो को देने के बारे में सोचे, मायरा ने जवाब दिया। आप खामखा इतने परेशान हो रहे हैं, फालतू में सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करके एक बड़ी सी मीटिंग अरेंज की, ना तो आर्या ब्रो इनका बिजनेस लेने वाले हैं और ना ही इनकी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, शौर्या ने मुंह बनाकर कहा। आशुतोष उन दोनों को उनकी बदतमीजी पर डांटते उससे पहले दोनों वहां से चले गए। कैरिन भी वहां से जाने को हुई, तभी आशुतोष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वी नीड टू टॉक, अब बात करने को रही क्या गया है? अभी अभी तो तुमने सबके सामने अनाउंस किया कि तुम आर्या को वापस यहाँ लाने के लिए मुझे घर से निकालने वाले हो। इससे पहले कि तुम मेरी इंसल्ट करो, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। डोंट फॉरगेट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कैरिन ने गुस्से में कहा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैंने कुछ और भी प्लान किया है। तुम कुछ टाइम के लिए मेरे दूसरे वाले घर में रह सकती हो, हम वहाँ साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे। जब आर्या मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा, उसके बाद हम दोनों भी एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। उसे वहां से जाने से रोकने के लिए आशुतोष ने गलती से अपना सारा प्लान उन सब लोगों के सामने बता दिया। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। तभी रमनदीप ने कहा, तभी मैं सोचूं, तुम आर्या के बारे में कब से सोचने लगे? तुम उसके साथ चीटिंग करना चाहते हो। ये चीटिंग नहीं होगी, बल्कि अपनी बात मनवाने का तरीका होगा। एक बार आप मेरी पसंद की लड़की से मिल तो लीजिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने आर्या के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की सिलेक्ट नहीं की है, आशुतोष ने जवाब दिया। मैं तुम लोगों के तमाशे में शामिल नहीं होने वाला, बेहतर होगा तुम सब लोग मेरे आर्या से दूर रहो, विक्रम जी ने गुस्से में कहा और वहां से अपने कमरे को जाने लगे। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों को ही समझाना नामुमकिन है, पर एक को समझा लिया तो दूसरा अपने आप हैंडल हो जाएगा, आशुतोष ने खुद से कहा। वो आर्या और विक्रम जी के बारे में बात कर रहा था। फिर उसने रमनदीप के पास आकर कहा, चाची जी आप तो समझाइए पापा जी को, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ पर साथ आर्या के बारे में भी तो सोच रहा हूँ। आई प्रॉमिस, आपको वो लड़की पसंद नहीं आई तो मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। रमनदीप ने उसकी बात पर हामी भरी। कहीं ना कहीं वो भी उससे सहमत थी। भले ही वो स्वार्थ में आकर आर्या के बारे में सोच रहा था, पर वो उसके भविष्य के बारे में कोई फैसला कर रहा था, यही बड़ी बात थी। रमनदीप अपने घर जाने के बजाय ऊपर विक्रम जी के कमरे में आई। विक्रम जी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। उन्होंने बिना पलटे कहा, अच्छा तो उसने तुम्हें भेजा है ताकि मुझसे बात कर सको। रमन, तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं इस बार किसी की नहीं सुनने वाला।
उनका नाम लेने पर रमनदीप को हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। आज भी मेरे कदमों की आहट पहचानते हो, मेरा इतना मान रखते हो तो इतनी सी बात मान लो, लड़की से मिलने में क्या हर्ज है? अगर आशुतोष इतना कॉन्फिडेंट होकर कह रहा है तो जरूर कोई बात होगी। मैं उसकी प्लानिंग और फ्लोटिंग में अपने आर्यों को नहीं फंसने दूंगा, वैसे भी उसने कम गलत नहीं किया है उसके साथ। रमनदीप विक्रम जी के पास आई और मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए आज तक तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी न जाने किस उम्मीद में मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देती हूँ। इस बार आशुतोष के साथ हो जाओ, क्योंकि वो आर्य की भलाई चाहता है। रमनदीप की जिद के आगे आकर विक्रम जी को हाँ कहना ही पड़ा। ठीक है, लेकिन आर्य वो लड़की पसंद नहीं आई है, उसने पहली बार में ही मना कर दिया तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा। और तुम्हें लगता है कोई उसे फोर्स कर सकता है? रमनदीप ने कहा। हाँ वो तो है, चलो इस बारे में आर्य से बात कर ली जाए, बोलते हुए विक्रम जी ने तुरंत आर्य को कॉल मिलाया। वो उस समय ध्वनि के पास था। विक्रम जी का कॉल आता देख ध्वनि ने कॉल पिक किया और फोन स्पीकर पर कर दिया। दादू मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोगों की वजह से मेरा इतना काम खराब हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज इसे समझाइए और मुझे यहाँ से डिस्चार्ज दिला दीजिए, मैं दो ही दिन में यहाँ परेशान हो गया हूँ। आर्य ने फोन उठाते ही बच्चों की तरह शिकायतें करनी शुरू कर दी। हाँ अब तो तुम अपनी डिस्चार्ज की तैयारियां कर ही लो, क्योंकि तुम ओबेरॉय मेंशन जो आने वाले हो, विक्रम जी के बजाय रमनदीप ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आर्य को बहुत हैरानी हुई। उसने जानबूझकर आशुतोष के सामने ऐसी शर्त रखी थी जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। आई कांट बिलीव, क्या सच में मिस्टर ओबेरॉय अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, वो भी मुझे वापस लाने के लिए? अनबिलीवेबल, आर्या बोला। हाँ वो तैयार है, पर उसकी भी एक शर्त है, विक्रम ने कहा। हाँ रॉकी सी बात है, बिना कोई डील के उनकी कोई बात पूरी कहाँ होती है। उन्होंने ये बोला होगा कि अगर मैं घर आऊंगा तो मुझे उनकी सारी बात माननी होगी, तभी वो कैरन को घर से निकालेंगे, या फिर मुझे उनका बिजनेस संभालना होगा। आर्या की बात सुनकर विक्रम जी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उन्होंने दबी आवाज में कहा, वो चाहता है कि तुम उसकी पसंद की लड़की से शादी करो और फिर शादी के बाद दोनों इसी घर में रहो। उनकी बात सुनकर आर्या हंसने लगा। मुझे लगा ही था, वो ऐसे कैसे मान गए? उन्हें कह दीजिएगा बार बार शादी करने में उन्हें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं। हाँ तो तुझे बार बार शादी करने के लिए कह ही कौन रहा है, एक बार कर लो वही काफी है, रमनदीप ने उसे समझाने की कोशिश की। ध्वनि जो उन सब की बातें सुन रही थी, उसने आर्या की तरफ देखा और इशारों इशारों में पूछा कि वो क्या डिसीजन लेने वाला है। आर्या ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, उन्हें बोल दीजिएगा जब मैं घर आऊँ तो वो कैरन मुझे दिखनी नहीं चाहिए। विक्रम जी ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। आर्या के हाँ कहने पर विक्रम जी और रमनदीप के साथ साथ ध्वनि को भी हैरानी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी, एक तरफ आर्या शिवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो वहीं दूसरी उसने अपने पापा से अरेंज मैरिज करने के लिए हाँ कह दी थी।